नमस्कार भारत, रविवार 18 अक्टूबर, मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली में दो नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के बाद फिर तेज हुई राजनीति। पुलिस ने किया एक मामले को सुलझाने का दावा।
जहां पे इंसिडेंट हुआ है तो ये एक ही मकान के तीन मंजिलों पे, बीच वाली मंजिल पे विक्टिम रहते थे और ऊपर नीचे वाले पे दो एक्यूज रहते थे।
राजकोट में रात भर बंद रहा मोबाइल पर इंटरनेट। क्रिकेट मैच में पटेल समुदाय ने दी बाधा डालने की चेतावनी। सूखे की मार किसानों के साथ दूसरे लोगों से भी छीन रही है रोजी रोटी। भारत के लेखक क्यों लौटा रहे हैं पुरस्कार, बताएंगे उदय प्रकाश।
आप अगर गुलाम अली को रोकते हैं, आप गुलाम अली को नहीं रोक रहे हैं, आप गजल को रोक रहे हैं, आप कव्वाली को रोक रहे हैं, आप नज्म को रोक रहे हैं, आप ख्याल को रोक रहे हैं, आप तराना को रोक रहे हैं, आप तबले को रोक रहे हैं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान तब आया है जब दिल्ली में कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है, जिसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के हाथ में दिए जाने की मांग करते रहे हैं। हंगरी की तरफ से सीमा बंद करने के बाद क्रोएशिया से हजारों प्रवासी स्लोवेनिया में दाखिल हो रहे हैं। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मीरो सेरार ने कहा कि प्रवासियों से निपटने के लिए सेना पुलिस की मदद करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बैठक के बाद उन्होंने कहा, स्लोवेनिया में आपात स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीमा पर हालात पर काबू पाने की कोशिश करेंगे ताकि देश के बाकी हिस्सों पर इसका असर ना पड़े। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री मीरो सेरार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि इस साल अभी तक समंदर के रास्ते 6 लाख से ज्यादा प्रवासी यूरोप पहुंचे हैं। प्रवासियों की ये संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रीस पहुंचने वाले अधिकतर प्रवासी तुर्की से आए हैं। प्रवासियों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर लीबिया से आने वाले प्रवासी हैं, जो भूमध्य सागर पार करके इटली पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का यह भी कहना है कि यूरोप पहुंचने के प्रयास में इस साल लगभग 3,000 प्रवासी डूब गए हैं या लापता हैं। यूक्रेन में काले सागर के पास एक नौका के डूबने से कम 12 लोग मारे गए हैं। 20 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि नौका में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे, जो तूफान में फंसने की वजह से पलट गई। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चली हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने तूफान की वजह से 3 दिन बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है। तूफान के कारण तमाम घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और तटीय इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान ऐसे समय आया है जब 2 साल पहले आए हेयान तूफान से हुई तबाही से फिलीपींस पूरी तरह उबर भी नहीं पाया है। यमन में सुरक्षा अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में हुए हवाई हमले में एक गलत निशाने की वजह से कम 20 सैनिक मारे गए हैं। कम से कम 20 लोग घायल भी हुए हैं। हमले की यह घटना दक्षिणी ताइज और लहज प्रांतों के बीच हुई है, जहां हालिया दिनों में भीषण झड़पें हुई हैं। यमन के कई हिस्सों पर हूथी समर्थक विद्रोहियों का नियंत्रण है। निर्वासित राष्ट्रपति मंसूर हादी के वफादार सैनिकों के समर्थन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन हूथी विद्रोहियों पर हमले कर रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। दिल्ली में एक ही दिन दो नाबालिग बच्चियों के साथ अलग अलग इलाके में हुई बलात्कार की घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया है। पुलिस का दावा है कि वो गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी बीच राजनीति ने भी सिर उठा लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन घटनाओं को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर जिम्मेदारी से काम न करने की बात कही है। पूरा ब्यौरा सुनिए संदीप राय से।
5 साल से कम उम्र की दो बच्चियों के साथ अलग अलग इलाके में हुई बलात्कार की घटनाओं के बाद एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। पीड़ित बच्चियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आनंद विहार की घटना के मामले में पुलिस ने केस सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस के DCP ईस्ट भैरव सिंह गुर्जर ने बताया,
माइनर के साथ हुआ है ये इंसिडेंट। तीनों जो एक्यूज थे उनको हमने पकड़ लिया है और उनको कोर्ट में पेश कर दिया है। इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेडिकली अभी हमने चेक किया था वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्थिति पहले से सुधार है और इम्प्रूवमेंट है कंडीशन। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो ये एक ही मकान की तीन मंजिलों पे, बीच वाली मंजिल पे विक्टिम रहते थे और ऊपर नीचे वाले पे दो एक्यूज रहते थे।
वहीं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी दीपेंद्र पाठक ने दावा किया कि पुलिस नागलोई की घटना को भी जल्दी सुलझा लेगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित की हालत स्थिर है।
हाल बिहार में निलोटी एक्सटेंशन का एरिया है, एक छोटी बच्ची थी 2.5 से 3 साल के बीच, एक पार्क है डेजर्टेड सा, वहाँ पे वो मिली। उस पे सेक्सुअल असॉल्ट भी और जनरल थोड़े असॉल्ट के मार्क्स थे, सहमी हुई थी, उसको तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ वो फिर उसका इलाज शुरू हो गया, वो स्टेबल है, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है।
दिल्ली पुलिस तेजी से काम करने का दावा कर रही है, लेकिन बच्चों के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं को लेकर लोगों का भरोसा डगमगा गया है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो इस मामले को लेकर आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल ने शनिवार को दोनों पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा करें। केजरीवाल ने कहा,
बड़े दुख की बात है कि 2.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस किस्म का बलात्कार हो रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि हफ्ते में 10 दिन में घंटा 2 घंटा निकालें और LG साहब के साथ बैठ के दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके उसके ऊपर वो थोड़ा विचार किया करें। केंद्र सरकार के पास अगर दिल्ली पुलिस पे पैसा खर्च करने के लिए नहीं है तो दिल्ली पुलिस अपने अंडर में क्यों रखी हुई है? केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे, हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के लिए तैयार।
केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस राज्य सरकार से भी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार सिर्फ राजनीति में जुटी है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने BBC से कहा,
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं और दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और साथ साथ बलात्कार की घटनाएं 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई हैं पिछले सालों के मुकाबले, और दोनों की दोनों सरकारें, पुलिस और दिल्ली सरकार, अपने अपनी तरफ से कुछ भी कार्य नहीं कर रही। जैसे कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को मदद करने के लिए हेल्पलाइन शुरुआत करी गई थी, 526 करोड़ रुपए का बजट अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, लेकिन उसमें से 5 पैसे भी हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार के लिए नहीं खर्च किया।
दिल्ली की नजर आज मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की मीटिंग पर भी रहेगी कि क्या इसके जरिए सुरक्षा का कोई फॉर्मूला निकल पाएगा। संदीप राय, BBC दिल्ली।
दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र की भूमिका पर सवाल उठा रही है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी से पूछा कि केजरीवाल के आरोपों पर उनका क्या जवाब है।
आपको हैरानी होगी कि गूगल सर्च के अंदर दिल्ली की घटना जो कि केजरीवाल जी के बयानों से भरी हुई है, उसके और 9 अक्टूबर के बीच में कोई माइनर्स के सेक्सुअल असॉल्ट संबंधित कोई घटना गूगल पे आती नहीं है। और जब उसकी आप बारीकी से और सोर्सेस से सर्च करते हैं, 4 में से 1 महिला और 6 में से 1 पुरुष, उसकी 18 की कम उम्र से पहले सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है अमेरिकन डाटा के मुताबिक, और बावजूद इस डाटा के कोई इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कहीं पर देखने और सुनने को नहीं मिलती। इससे 2 विषय सामने आते हैं। एक तो ये कि जो भी इस तरीके के अभद्र कामों में लिप्त अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो भी कानून के मुताबिक। अमेरिका वगैरह में तो सीधे तौर पर उनको डेथ पेनल्टी से लेकर तमाम चीजें होती हैं। और वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, मैं इस बात के लिए उनकी दाद देना चाहती हूँ, वो अपने देश के प्रति इतने सूझबूझ से काम करते हैं कि जिस विषय को हैंडल करना है उसको फर्मली हैंडल किया जाएगा और उस पर फिजूल की राजनीति नहीं की जाएगी। इन सब चीजों को जब आप कॉन्ट्रास्टिंग तरीके से दिल्ली के स्थिति में पाते हैं तो आपको हैरानी होती है कि किस तरीके के लोग, जो कि ना केवल ना समझ है बल्कि इस तरीके की घटिया राजनीति में लिप्त है।
आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों के इस तरह के बयान आए हैं जिनको लोग बड़ा असंवेदनशील देख रहे हैं, खासतौर पर इन घटनाओं को लेकर।
संवेदनहीनता से कभी काम नहीं होना चाहिए इन विषयों पर। और मुख्य बात ये बताना चाहती हूँ कि पुलिस और जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये इतने बेबस हैं कि बिना पुलिस के ये काम ही नहीं कर सकते, पुलिस तो काम करती है जब आपराधिक घटना घट चुकी होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते प्रिवेंशन की तरफ आपने क्या काम किया? जब इंटरनेट के ऊपर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको लेकर तमाम तरीके का बवाल खड़ा कर देते हैं। ये सब इन्हीं सब चीजों का नतीजा है। समाज के अंदर संवेदना होनी चाहिए, लोगों की मानसिकता महिलाओं को लेकर बच्चों को लेकर सेंसिटिव होनी चाहिए और उसको किसी भी प्रकार से संवेदनहीनता का प्रतीक नहीं बन देना चाहिए। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के पक्षधर नहीं हूँ जो संवेदनहीनता का प्रतीक हो।
आप कानून की भी जानकार हैं। दिसंबर 2012 में जो घटना दिल्ली में हुई थी उसके बाद एक बड़ा सख्त कानून बनाया गया और माना गया इस कानून से ऐसी घटनाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए?
देखिए, जितने ब्लीडिंग हार्ट्स हैं ना इस देश में, जो फिजूल में कभी डेथ पेनल्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब ये घटनाएं होती है, जो मौका देखकर अपनी राजनीति करते हैं, उन लोगों से मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि जब इस तरीके के अपराधियों को मौत की सजा दी जाए और उसका अधिक से अधिक प्रचार हो और जल्द से जल्द सजा दी जाए, तब आप इम्पैक्ट देखिएगा। अभी तक तो उन लोगों को भी सजा नहीं मिली है जो 12 दिसंबर वाली घटना में लिप्त थे।
बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी आरोपों का, केजरीवाल के आरोपों का जवाब दे रही थी बीबीसी से बातचीत में। उनसे बातचीत की थी हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने। राजकोट में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पटेल आरक्षण की मांग उठा रहे हार्दिक पटेल ने चेतावनी दी है कि वो खिलाड़ियों की बस को रोकेंगे। हार्दिक पटेल ने मैच के दौरान विरोध की चेतावनी दी थी, जिसके बाद टिकटों की बिक्री में सावधानी बरती गई और पहचान पत्र देखने के बाद ही टिकट दिए गए। हार्दिक पटेल ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा है,
हम सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड को और बीसीसीआई को ऐलान करते हैं कि तुरंत ही पहले इन टिकटों का खुलासा किया जाए। भारत की टीम का और साउथ अफ्रीका टीम का जो रास्ता है स्टेडियम के आने का, वो रास्ते रोककर हम उनका विरोध करेंगे मैच का और स्टेडियम का घिराव भी करेंगे। ये गुजरात गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो लोग उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मैच में कुछ दखल देने का प्रयास है और ये सारी कोशिश है और सारे उनके नाकाम तरीके वो पटेलों पर ठोकना चाहते हैं जी। हम मैच को रुकावट डालने का प्रयास भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग पटेलों को गैर मार्ग पर दौड़ना चाहते हैं, तो हम इस मैच का भी विरोध करेंगे, मैच की जो टीम आने वाली उनको भी रोकने का प्रयास करेंगे और स्टेडियम का भी घेरावा करेंगे।
हार्दिक पटेल के इस ऐलान के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है और बीती रात 10 बजे से मोबाइल पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राजकोट के पुलिस कमिश्नर मोहन झा से बात की और पूछा कि पुलिस ने मैच की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं।
हम लोगों ने बिल्कुल एडिक्वेट अरेंजमेंट्स किए हैं। सबसे पहले तो जो टिकट है वो आई कार्ड के ऊपर में बेचा गया है, जिससे कि कोई ऐसा आदमी, कोई सस्पिशियस आदमी आकर के कोई नहीं कर जाए। और जो स्टेडियम का रूट है उसके लगभग 2 किलोमीटर पहले से हम लोगों ने जाहिरनामा किया है कि वहां पे हमने रूट को रिस्ट्रिक्ट किया है, अल्टरनेट रूट प्रोवाइड किया है ट्रैफिक के लिए, और जिनके पास में टिकट होगा और आई कार्ड होगा वही उस स्टेडियम के तरफ जा पाएंगे। हाईवे का जो रास्ता है वो जाम नहीं हो, उसके लिए हमने एडिक्वेट पुलिस फोर्स, करीब हमने 5 कंपनी स्टेट रिजर्व पुलिस की बुलाई है और जो हमारे इंटेलिजेंस है उसको भी गियर है। खास करके जो प्लेयर्स 2 जगह यहाँ पर रुके हुए हैं, दोनों जगह से उनको स्टेडियम तक पहुँचने में कोई दिक्कत, उसके लिए बिल्कुल ही काफी ही कड़क इंतजाम किया गया है उस तरफ। और ये जो है दोनों, एक सिटी और राजकोट ग्राम में दोनों का विस्तार पड़ता है, तो हम लोग कंप्लीट कोऑर्डिनेशन में है कि कोई भी तरह का बनाव नहीं बने और ये क्रिकेट का मैच जो है उसमें कोई पॉलिटिक्स खेलना भी ठीक नहीं है। कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जहां हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रिवेंटिव अरेस्ट करवाऊंगा।
तो कमिश्नर साहब, इनकी जो चेतावनी है, जिस तरह के पिछले इंसिडेंट्स होते रहे हैं इस आंदोलन के तहत, तो इसे आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं?
हम कोई भी चेतावनी को कैजुअली नहीं ले सकते और उसको सीरियसली लेते हुए हमने पूरा इंतजाम किया है।
दोनों टीमें जो हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं, उनकी इस बारे में आपसे कोई बात हुई है?
बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम लोग जो है उनको बिल्कुल 15 तारीख से लेकर के और आज 17 तारीख वो लोग पूरा सेटिस्फाइड हैं। और हम लोग उसमें भी हमने करीब 2 कंपनी SRP और मंगाई है, सफिशियंट पुलिस बंदोबस्त दिया गया है और हमने जो है जो लेसन्स भी हमें कुछ जो बनाव बने हैं उनसे भी लेसन्स हमने लिए हैं और हम लोग पूरे विजिलेंट हैं कि कोई भी तरह का बनाव नहीं बने। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि कोई भी बनाव नहीं बनेगा और ये क्रिकेट मैच बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूरा होगा।
राजकोट के पुलिस कमिश्नर मोहन झा बता रहे थे कि वहाँ मैच की सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं, और अब आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है इस पर नज़र डाल लेते हैं। संदीप सोनी के साथ, संदीप स्टूडियो में हाजिर हैं, बताइए।
निखिल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने अपने मुखपत्र पांच जन्म में दादरी की घटना का ये कहते हुए एक तरह से खुला समर्थन किया है कि वेदों में इस बात के आदेश हैं कि उन पापियों को मार दो जो गाय का वध करते हैं। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है। वहीं नवभारत टाइम्स में खबर छपी है जिसके मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने कहा है कि दादरी की घटना निजी झगड़ा थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट से बिहार में पार्टी नेताओं के मतभेदों के बारे में पता चला है। ये खबर अंग्रेजी के अखबार द हिंदू के पहले पन्ने पर है। बीजेपी ने बिहार में चुनाव प्रचार की रणनीति में बदलाव किया है। चुनाव पोस्टरों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बीजेपी के राज्य स्तर के जो नेता हैं उनको जगह मिल रही है, और इसी तरह अब की बार मोदी सरकार का नारा बदल दिया गया है। यह खबर मोटे मोटे गहरे काले अक्षरों में द हिंदू में छपी है। अगला अखबार देखें टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ छपी खबर कहती है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की वजह से कई उच्च न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हुआ है। अलग अलग उच्च न्यायालयों में कुल मिलाकर 1017 पद खाली पड़े हैं।
अभी दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर जो है वो भी मसला उठा था,
उसी संदर्भ में ये खबर प्रकाशित हुई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर कहती है कि दो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं ने दिल्ली को झकझोर दिया है। ये खबर वैसे तो हर अखबार के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी कहती है, दिल्ली फिर हुई शर्मसार, दो मासूमों से सामूहिक बलात्कार। जनसत्ता ने इस खबर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान छापा है, सब नाकाम, अब हमें दे दो दिल्ली पुलिस। इन तमाम खबरों के अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। दैनिक जागरण और कुछ अन्य अखबारों में भी ये खबर छपी है।
बहुत शुक्रिया संदीप सोनी अखबारों की समीक्षा के लिए। BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ, और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। लातूर के सोनावटी गांव के चंद्रकांत बाबू परेशान हैं। अब उनकी दुकान पर उतने किसान हजामत बनवाने नहीं आते जितने दो साल पहले आते थे। चंद्रकांत का धंधा आधा रह गया है। मराठवाड़ा के इस गांव में इस साल बारिश सामान्य से आधी हुई है। सूखे के बावजूद इस साल लोगों ने गन्ना उगाने की कोशिश की ताकि वो पिछले साल के नुकसान की भरपाई कर सकें, मगर हो गया उल्टा। सुनिए BBC संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट।
सूखे और अकाल के निशान ढूंढते हुए एक रात मैं लातूर के सोनावटी गांव पहुंचा तो पाया कि नाई चंद्रकांत बाबू की दुकान खुली हुई थी। पूछा तो पता चला कि चंद्रकांत के धंधे पर भी सूखे का उतना ही असर है जितना पड़ोस के खेत पर।
पैसा नहीं ना, बारिश की वजह से काम नहीं लग रहे खेत में। इनके पास खेती है, इनके खेत में कुछ आया नहीं तो इनके कहाँ से काम लगाएंगे, रोजगार कहाँ से लगाएंगे। इन्हें खाली बैठे हैं तो रोजगार क्यों लगाएंगे।
तो फिर ये लोग क्या सोचते हैं,
क्या दाढ़ी को पैसा नहीं ना उनके पास, करते तो उधार करते हैं। उधार करके हम भी 8-4 दिन ढकलते, चलो आज का कल होंगे, कल का परसों देंगे, उसके ऊपर परिणाम पड़ देना।
कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तक हर जगह इस बात के सबूत मिले कि बारिश की कमी ने किसान ही नहीं उससे जुड़े हर पेशे और कारोबार को सुखा डाला है। चंद्रकांत बताते हैं, दो साल पहले तक उनकी दुकान पर रोज औसतन 15 किसान आते थे, अब सिर्फ 7-8 ही आते हैं और उनमें भी ज्यादातर उधार पर हजामत बनवाते हैं। जब फसल कटती है तो उन्हें किसान एक हिस्सा दे देते हैं जिसके बदले वो साल भर उनके बाल काटने और हजामत का काम करते हैं।
बारिश नहीं गिरी ना, खेत में माल नहीं निकलता, वो खेती वाले क्या देते हैं, हमारी परेशानी है ना। बाद में हम उनको भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उनको।
सोनावटी का हर किसान और मजदूर खरीद कर पानी पीता है। चंद्रकांत भी 400 रुपये महीने का पानी खरीदते हैं जिसमें हजामत और ग्राहकों को पिलाने पर 10 लीटर पानी खर्च होता है।
1.5 रुपए का पानी लगता है दिन में, तो पूरा बोले तो एक 15-10 घड़े लगते हैं, 150 लीटर पानी लगता है दिन में।
केवल दुकान में 150 लीटर लगता
है? नहीं नहीं, दुकान में नहीं, घर जानवर ले बोले तो 15 घड़े लगते हैं। 20 तारीख बोले तो एक 25 रुपए को बॉटल है 20 लीटर की, तो 10 रुपए का पानी लगता है दिन में।
सिर्फ 10 रुपए का पानी में आपका सबकी दाढ़ी बना देते हैं आप?
खाली दाढ़ी बनती है ना, कुछ दूसरा कुछ नहीं बनता ना यहाँ।
सोनावटी के बाद बीड़ के गांव मादल मोही पहुंचने पर मुझे पता चला कि लॉन्ड्री चलाने वाले भास्कर लक्ष्मण यादव की हालत नाई चंद्रकांत बाबू से अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि किसान अब कपड़े धुलवाने नहीं आते, पहले उन्हें 300 रुपये रोज का काम मिलता था तो अब वो 150 भी मुश्किल से उठा पाते हैं। 3 बच्चों का पेट और स्कूल की फीस भरने के लिए उनकी पत्नी नंदा भास्कर ने अब घरों में बर्तन धोने का काम शुरू किया है, मगर उसमें उन्हें सिर्फ 300 रुपये महीने ही मिल पाते हैं। संवेदना यात्रा में शामिल एडवोकेट PS शारदा ने खेती से जुड़े धंधों और लोगों की हालत को लेकर काफ़ी पड़ताल की है। उनका कहना था,
जो किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है उसका भी बेड़ा गर्क होने की कगार पे है। किसी का धंधा आधा हो गया, किसी का 60% कम हो गया, किसी को तो पूरे पूरे दिन कोई दिहाड़ी नहीं मिलती, और जो वर्कर आता है वो कहता है कि भाई ये तो यहाँ भी सब भूखे ही हैं तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो वो भी सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ।
मैंने सुना है कि जब एक पेड़ सूखता है तो सिर्फ उसकी पत्तियाँ ही नहीं सूखती, फूल ही नहीं कुमलाते, बल्कि उससे जुड़ी पूरी सृष्टि ही बांझ हो जाती है। अजय शर्मा, BBC, सोनावटी गांव, लातूर, महाराष्ट्र।
अजय शर्मा की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अब बात उन खबरों की जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नज़र।
गुजरात के राजकोट में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाना है। पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उठा रहे हार्दिक पटेल ने मैच में बाधा डालने की चेतावनी दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की आज मुंबई में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सट्टेबाजी मामले में निलंबित IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भविष्य समेत कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल आज तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में राष्ट्रपति रिचप तैयब अर्दोआन समेत अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात का मकसद तुर्की को प्रवासियों से जुड़े एक समझौते पर राजी कराना है। प्रवासियों और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर भय और आशंकाओं के बीच स्विट्जरलैंड में संसदीय चुनाव हो रहे हैं। मिस्र में भी संसदीय चुनाव के पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। सत्ता पर राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की पकड़ के हिसाब से इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और अब बात आज के न्यूज मेकर की। हिंदी के चर्चित लेखक उदय प्रकाश ने कन्नड़ साहित्यकार और विचारक MM कलबुर्गी की हत्या के विरोध में अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। इस हफ्ते के न्यूज मेकर में हम उन्हीं से आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं। उनसे BBC उर्दू के सुहेल हलीम ने ये बातचीत की है।
उदय प्रकाश साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि समाज में इंटॉलरेंस किस तरह नजर आ रही है, क्या तब्दीली देख रहे हैं आप?
मुझे लगता है, देखिए, पूरी लेगेसी रही हमारी, ये बहुत टॉलरेंट सोसाइटी रही है। और लोग ऐसा है ना कि अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था, मैंने उनसे कहा भी विदेश में, मैंने कहा भाई आपके यहाँ तो रेशियल है डिवीज़न, कन्फ्लिक्ट्स भी रेशियल हैं। अब समझ जाते हैं कौन स्पेनियार्ड्स है, कौन ब्लैक है, कौन वाइट है, कौन कहाँ का है, कौन चाइनीज़ है। लेकिन और उनके सबके अपने अलग अलग मोहल्ले भी हैं, कॉलोनीज़ हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों ने इंडिया, जिसको टैगोर ने ग्रेट ओशियन ऑफ ह्यूमैनिटी कहा था, यहाँ इतनी तरह के रेसेस हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने इमिग्रेशंस हुए हैं और सब मिल गए हैं। तो वी आर इन फैक्ट मल्टी ग्रेन आटा, हम लोगों के अंदर इतने दाने मिले हुए हैं और आटा बना हुआ है। अब आप इसको निकालोगे, अलग करोगे, आप गुर्दे को अलग करोगे दूसरे गुर्दे से, एक कलेजे को निकालोगे हार्ट से, तो क्या ये बॉडी जिंदा बचेगी? तो ये समझना चाहिए। मुझे जो लग रहा है वो ये कि जो ये होमोजेनेटी, एक तरह की एक ही सब कुछ हो, एकात्मक, तो एकात्मक जो बनाएंगे राष्ट्र का, देखिए नेशन का हो रहा है कि जो भी आप डिसेंटिंग कुछ करें तो कहेंगे एंटी नेशनल है, ये राष्ट्र विरोधी है। मैंने तो पूछा भी, FTII में भी मैंने पूछा कि भाई किसका राष्ट्र है ये हमारा भी राष्ट्र है, और इस देश के 125 अरब जनता है, उन सब का किसी एक का तो राष्ट्र है नहीं। कोई एक कास्ट आज क्लेम कर दे कि मेरा राष्ट्र है तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक तरह की फैनेटिसिज्म है, ये बहुत पनपता हुआ उग्रवाद है, और इसको रोकने की जिम्मेदारी ऐसी है कि समझिए कि हम अपनी लिगेसी बचाएंगे, अपनी हेरिटेज बचाएंगे। और जो हिंदुस्तान जाना जाता है कि इतने सब कुछ तमाम उथल पुथल के बावजूद वो अपनी अस्मिता को बचाए हुए है, एक लोकतांत्रिकता को बचाए हुए है, तो दरअसल लोकतंत्र को बचाने की भी ज़रूरत आन पड़ी है, वो हम लोगों के बस में तो है नहीं। हम लोग तो लेखक अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं और बोलने की आज़ादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना हम कर सकते हैं।
इसकी वजह क्या है और सबसे बड़ा खतरा आपको क्या नज़र आ रहा है
इसमें? देखिए, सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है कि जो, क्योंकि पैरेलल्स मैं कहना नहीं चाहता, मैं अभी म्यूनिक से होकर आया हूँ पिछले महीने, और वहाँ एग्जीबिशन भी मैंने देखा, काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन देखा, और म्यूनिक से शुरू हुआ था वहाँ हिटलर का और नाजियों का सब कुछ। तो कुछ चीज़ें थीं जो अब कुछ समानताएँ लगने लगती हैं, कई कई बार पैरेलल्स लगते हैं, कि एक तो जो बिग बिजनेस है, कॉरपोरेट है वो, फिर मीडिया, फिर जो रूलिंग एलीट जो हमारा वर्ग है वो सिर्फ एक तरफा बात करे, यानी दो तरफा ना हो, ना होने दे, डायलॉग की जगह पर वन वे कम्युनिकेशन। अब आप देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं बहुत बोलते हैं वो, और सचमुच बहुत बोलते हैं, इतनी रेटोरिक्स, इतनी भाषणबाजी इसके पहले तो हमने किसी प्राइम मिनिस्टर में नहीं देखा था। नेहरू नहीं बोल पाते थे ठीक से, गांधी को तो खैर बोलना ही नहीं आता था, और जयप्रकाश जी थे वो भी कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उनको बहुत बोलना नहीं आता, वो बातचीत करते थे, तो इतना अच्छा बोलने वाला, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो साइलेंट है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर आज तक वो खामोशी रखे हुए हैं, चुप्पी रखे हुए हैं, और जहाँ बोल रहे हैं वहाँ बोलने से मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता को कोई फ़ायदा होने वाला है। तो ये खामोशी डराती है, और यही बात वहाँ थी जर्मनी में। आपको मालूम होगा कि वन वे था, बहुत अच्छा बोलता था हिटलर, बहुत अच्छा गोएबल्स बोलते थे, और इतनी रिटोरिक्स कमाल की, और लोग उसके नशे में आ जाते थे और भावना में बह जाते थे, इमोशंस को अपील करता था। आज इतनी दूर खड़े होकर देखिए आप, 1939 से 45 के बीच में जो हुआ, आप आज खड़े होकर देखिए कैसा लगता है कि एक सनक भरे आदमी ने, एक उन्मादी ने, एक इंसेन माइंड ने पूरी जनता को जिस जगह पहुंचाया कि लोग एक दूसरे को मानने लगे। ज्यूज मारे गए, पोएट्स मारे गए, इंटेलेक्चुअल्स मारे गए, जो उस डेवलपमेंट में, सो कॉल्ड ग्रोथ में नहीं हिस्सा ले सकते थे, उन अपाहिजों को, अपंगों को, बूढ़ों को, सबको मारा गया, क्योंकि वो लोग अवांछित हो गए थे। तो ऐसा नहीं है इस देश में, देखिए बहुत कमज़ोर लोग भी रहते हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, और आज भी 72-77% जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में मानी जाती है बहुत गरीबी से गिरी हुई पॉपुलेशन है। जो भूख से मरने वाले लोग हैं वो कितने हैं, सुसाइड्स हो रही हैं फार्मर्स की। मलेरिया में तो ये है कि भारत ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि लगभग 2/3 मलेरिया से मरने वाले, डायरिया से मरने वाले, जिनको हम वाटर बॉर्न डिसीजेस कहते हैं, जो गंदे पानी से पैदा होने वाले रोग हैं, सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद हमारे देश में है। अब इन सबको आप ना एड्रेस करें, और आप राष्ट्रवाद और एकात्मक, और कोई बीफ खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई सुअर का, इन चीज़ों को आप रिड्यूस करके ले आएँ, तो अफसोस होता है सुहेल जी। मुझे ये लगता है, देखिए हिंदू धर्म, मैं भी हिंदू ही हूँ, और हिंदू धर्म तो ऐसा नहीं था, कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं थी, ये बहुत ही इंक्लूसिव फिलॉसफी थी ये, और उसमें सब थे, एथिस्ट भी थे, नास्तिक भी थे, बिलीवर्स भी थे, सगुण थे, निर्गुण थे, शिव को मानने वाले थे, कृष्ण को मानने वाले थे, और इतनी बड़े एपिक्स लिखे गए, तमाम सारे फोक टेल्स हैं, फोक लोर्स हैं, फिर पूरी सेंट और सूफी ट्रेडिशन रही है यहाँ, जिन्होंने लोगों के भीतर मोहब्बत पैदा की, लोगों को एक साथ जोड़े रखने में बहुत बड़ा उन्होंने रोल किया। अब ये क्या हो गया, कोई सूफी आज क्या गा पाएगा, बताइए आप, कोई सूफी आज गा पाएगा? या कोई, अभी हुआ गुलाम अली के साथ, देखा आपने? मैं तो नहीं मानता कि आर्ट की कोई सरहद होती है, कला की कोई बाउंड्री नहीं होती है। वी आर ए पोलिटिकल पीपल, हम लोग जो लिखते हैं हम किसी राजनीति के लोग नहीं हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि आपने गुलाम अली को रोक दिया, ठीक है, लेकिन गुलाम अली की गज़ल तो खुद शिवसेना के जो फादर फिगर थे बाला साहब ठाकरे, वो उनके गज़ल के फ़ैन थे, है ना? तो मेरा कहना है कि आप अगर गुलाम अली को रोकते हैं, आप गुलाम अली को नहीं रोक रहे हैं, आप गज़ल को रोक रहे हैं, आप कव्वाली को रोक रहे हैं, आप नज़्म को रोक रहे हैं, आप ख्याल को रोक रहे हैं, आप तराना को रोक रहे हैं, आप तबले को रोक रहे हैं।
आपने ये बातचीत सुनी उदय प्रकाश से आज के न्यूज़ मेकर में, और ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर बच्चों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान तब आया है जब दिल्ली में कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं। हंगरी की तरफ से सीमा बंद करने के बाद क्रोएशिया से हजारों प्रवासी स्लोवेनिया में दाखिल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि इस साल अभी तक समंदर के रास्ते 6 लाख से ज्यादा प्रवासी यूरोप पहुंचे हैं। यूक्रेन में काले सागर के पास एक नौका डूबने से कम 12 लोग मारे गए हैं। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोप्पू की वजह से 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हवाएं चली हैं। यमन में सुरक्षा अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में हुए हवाई हमले में एक गलत निशाने की वजह से कम 20 सैनिक मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में। आज स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, संदीप सोनी के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति, और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।